और न ऐसा कहीं हो सकता है। पशु पक्षी सबको आकर्षण करने वाले हैं। हिरण से हिरणी अपने पतियों को पीछे लेकर और कृष्ण से प्रणय की भिक्षा मांगती है। मयूर उनको देकर के नृत्य करने लगते हैं और बांसुरी की आवाज पर नृत्य करते हैं। कोयल रुकने लगती है, सारी प्रकृति एकदम विभोर हो जाती है, कृष्ण के रंग में रंग जाती है। आकाश में मेघ छा जाते हैं, ऊपर सुशीतल मानव बुंदे गिराने लगते हैं। बछड़े उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के एकदम चकित हो जाते हैं। मैया का दूध अभी गले में है, उन नीचे ले जाते हैं, ऊपर दे सकते निकल नहीं पाते, बस कान को खड़ा करके सुनते हैं। गाय चरना भूल गई, घाट उनके मुख में ही रह गया और गाय जैसे कि तैसे चुपचाप कान का दोना बनाए हुए कृष्ण की बंसी रूपी अमृत ध्वनि का पान कर रही। भूल गई, सब कुछ भूल गई, एक तप से आंखों से आंसू टपक रहे और कृष्ण भाव। ये कृष्ण ऐसे परम सुंदर, एक बार यदि देख लिया जीवन में मन और कहीं नहीं जाएगा। तो ये सुख भला कृष्ण बुलाए और न जाए, बस बुलाते ही जैसे ऐसे किया और बस वो आकर के उनके हाथों पर कंधे पर बैठ गया। वो सुख बैठ गया। अजय एक बार फिर से कहो तो क्या कर रहा है, फिर से बोलो एक बार। प्रिया जी का नाम तो जो प्रिया जी ने सिखलाया बोलो तो राधा जी के स्वर में मधुर वाणी से, कृष्ण की तो मधुर वाणी है, उनकी मधुर वाणी है, किंतु राधा जी की मधुर वाणी सुनकर के कृष्ण अपने भी आत्मविस्तृत होते हैं, अपने को खो बैठते हैं। कितना उनका सुंदर मधुर स्वर, बस सुख ने जो भी कृष्ण 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 का कृष्ण का नहीं। और मैं दुर्भागा जाति से चंचल, उनके प्रिय हाथों से उड़ करके यहाँ पर कह दिया, मेरा दुर्भाग्य। कृष्ण ने कहा जब तुम मेरे पास रहो मैं तुझे छोड़ना नहीं। बस उसको वही खाना खिलाने लगे, वो अनार का खिलाने लगे और दही और अन्न उसको खिलाने लगे। इतने में दो सहेली आई राधा जी की, अरे कृष्ण ऐसा मत करो, ये सुख हमारी प्रिया जी का, उसका बिना से एक मिनट नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, तू लौटा दे, मैं इसको बांध कर रखा हूं, यदि तुम्हारी प्रिया जी का है और तुम्हारा है तो उसे ले जाओ, बुला लो तुम्हारे पास में चला जाए, सदर मैं मान लूंगा तुम्हारा है, ले जाओ। बहुत बुलाने की चेष्टा की, वो सुख नहीं गया। वो बोलेंगे थे बड़ा तुम्हारे यहाँ करके कोई लौट सकता है, यदि हाँ हमारी प्रिया जी आएगी तो झट एक क्षण में उसे बुला लेंगे। तो जाओ अपनी प्रिया जी को बुला लो, तुम्हारी प्रिया जी ऐसी नहीं है तैसी जो तुम्हारे पास में आए, आप उनके पास में जाओ, वो नहीं आएंगी तो सुख भी यदि ले जाना हो तो ले जाओ, ना तो मैं नहीं देता। और सुख को इस तरह से करने लगे। वो दोनों ललिता देता काजी वहां से लौट करके मैया के यहाँ गई, यशोदा के यहाँ, मैया री ये हमारी सखी का ये सुख जो है वह दे दिया है, ये कृष्ण के पास में आ गया, वो देता नहीं है और उसके बिना तो हमारी प्रिया जी रह नहीं सकती है, इसलिए आप किसी प्रकार से दिल पाए। अच्छा अच्छा ठहर जाओ, बैठ जाओ ये अभी मैं लाता। ये करके वो मधुमंगल के साथ में उस तोते के साथ में कृष्ण खेल रहे थे और उसे बार बार वही सब सुन रहे थे। जो तो गाजमा झट गई और झपट करके उसको पकड़ लिया। ठीक रात ऐसे पशुओं के साथ में खेलता रहेगा, बुद्धि नहीं अकल नहीं, स्नान करने का समय हो गया और यहाँ पशुओं के साथ में खेल बस झट ले आई और उनको पकड़ करके हाथ और ये जाओ जल्दी से स्नान करो, नंद बाबा तुम्हारे भूखे बैठे हैं तुम्हारे लिए, और तुम पशुओं के साथ में ऐसा चलता रहेगा। कृष्ण कुछ नहीं कर सके हैं, कृष्ण ये हैं कौन, सुन प्रेम प्रश्न आरती और गौड दे देंगे, समस्त भगवानों के भगवानों के भगवान के भी भगवान है, सब कारणों के कारण है, आज याद लेकर के। ये जो सुख है राधा जी का प्यारी प्यारा और कृष्ण का भी प्यारा है। जब कृष्ण की लीला पूरी समाप्त हो गई, द्वारका की लीला भी पूरी समाप्त हो गई, उस समय में कृष्ण एक सुख से बोले, देखो अब ये तुम यहीं पर हो, अब हम लोग अपने लीला में जा रहे हैं गोलोक वृंदावन, और तुम जगत में रह करके इस जो भागवत का उपदेश है, हमारा जो लीला चरित्र है, तुम जगत को देना, यही सूर्य के समान काम करेगा और पृथ्वी का यही रक्षा करेगा।
इसे तुम्हारे ऊपर में हम छोड़ करके जाना चाहते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान के ऊपर में छोड़ करके चले गए, ऐसे ही इनको छोड़ दें। पावर रोने जी भी आने लगे, प्रभु आपको छोड़ करके हम नहीं रह सकते। देखो ये भी तो एक कार्य है, हम लोग चले जाएंगे जगत अनाथ हो जाएगा, इसलिए आप रह करके भागवत को जगत में प्रकाश करेंगे, इसलिए जाते हैं, फिर समय आने पर आप हमारे पास मिल सकें। इसलिए सुखदेव जी को वहां पर छोड़ दिया। अब ये तो हुआ एक कल्प की बात, दूसरे कल्प में जब भगवान आने को हैं, इधर में कलयुग समाप्त हुआ, कलयुग आया द्वापर समाप्त हुआ, उसमें पृथ्वी पर चारों तरफ में भगवत भक्ति नष्ट हो गई। स्त्रियों का आभूषण केवल रह गया क्या, तीर के ब्रह्मचर्य के द्वारा उनका होठ लाल रहेगा नहीं, तरह तरह के रंगों को लेकर के होठ रंग। पुरुषों में कोई पौष नहीं रहा, केवल ऊपर से जो गाल बजाया वही साधु बन गया, कोई भजन साधन नहीं। इस तरह से जब तक कि पति उसके अनुकूल है, कुछ देता है तो ठीक है, और नहीं तो पतियों को 10 बार 5 20 बार 50 बार भी तलाक देते हैं। आजकल आज हो रहा है, अभी हमारी भारत की संस्कृति कुछ है जहां पर ये कुछ बचा हुआ है, जहां कुछ धर्म तत्व है। इसलिए ये सब जब कल युग आने लगा, उस समय में परीक्षित महाराज जी को ये चीज हुई, उस समय सुखदेव गोस्वामी जी घूमने लगे जगत में, भगवान के अवतार घूमने लगे। कहाँ जाऊं प्रभु जी से कहा, हमको रहने के लिए भागवत को प्रकाश करने के लिए भागवत को कैसे प्रकाश किया जाए, बिना भगवत लीला कथा के वो रह नहीं सकते। घूमते घूमते जहां भगवान की कथा हो रही वहां पर जाएंगे, पहुंचते पहुंचते कैलाश, वहां पर शंकर जी पार्वती जी को यही भगवान भागवत की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं, वहां पर सुन रहे थे, पेड़ के ऊपर में बैठ गए और सुनने लगे। जाति के स्वभाव से यदि तत्व की बातें हो ना, पर तत्व की हम बातें करने लगे तो पहले महिलाएं सुन जाए सो जाए, आलस आएगा, फिर ऐसे हाथ धरेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर जम भाई आएगी, और फिर ऐसे। कुछ लोगों का भी आंखों में लाखा हमक के पत्थर बैठ जाएंगे, वो आंख नहीं खुल सकेंगे। हरी कथा में ऐसे तत्व की बात है, इसके लीला कथाओं के माध्यम से कहने पर कुछ और बीच बीच में ये एक चटनी ले ली जाती है कीर्तन की, तो जिससे कि लोग जरा ठीक रहते हैं। इसलिए ये कीर्तन हो रहा है और बीच में सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं ये सब कह रहे हैं। तत्व की कहानी यदि कहने लगे तत्व की, बस एक मिनट में सभी सो जाए। इसलिए पार्वती जी सो गई, जब सृष्टि का प्रकरण आया और कपिल देवभूति वाला संवाद आया तो धीरे धीरे वो सो गए। और सुख पक्षी जो तमाल वृक्ष के वहां पर पेड़ पर बैठा हुआ था वो हंकारी करने लगा, हाँ बहुत थे, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, किस रूप में पार्वती जी के ठीक बोली में वहां पर भी नकल कर लिया पार्वती जी की बोली और कहने लगा। शंकर जी सोचे कि हमारी प्रिया जी सो रहे जग रही हैं और बड़ी प्रेम के साथ में सुन रही हैं। जब भागवत शेष होने को आया, खत्म होने को आया, उस समय में हठात जग गई। जगने से बोली, अरे प्रिय मैं तो भागवत की कथा सुन नहीं सकी, मैं पहले संगता थोड़ा सा मैंने सुना था, इसके बाद तो मैं कुछ सुनी नहीं, फिर से हमसे करिए। तो सुना कौन, सुना कौन, तुम्ही तो हूं कार्य कर रहे थे, नहीं मैं सुना ही। शंकर जी ने देखा चारों तरफ में, खोजा कौन हूं कार्य कर रहा था, खोजते खोजते कहीं नहीं देखा, तो अंत में देखा कि पेड़ के ऊपर में घने पत्तों के हरियाली में छिपा हुआ वो सुख पक्षी बैठा हुआ है। अरे ये तो बड़ा अनाधिकारी, भागवत सुन लिया, अनाधिकारी को भागवत का नहीं श्रवण करना चाहिए, सुन लिया। अच्छा मैं इंशाल्लाह अनाधिकारी को अपने सुरसुर से जरूर मारूंगा, ऐसा कहकर शंकर जी उसका पीछा किया और वो भागा। वैसे केदारनाथ से वहां से कैलाश से बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु बाहर ऐसी चोटियां हैं जो जाने में एक महीने लग जाएंगे पैदल। हम लोग वहां पर गए हुए हैं, बहुत दूर, बहुत दूर से जाना पड़ता है और यदि कोई ढूंढने वाला हो झट पहुंच जाएगा, अधिक से अधिक 3-4 मिनट भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी उठे और उनके पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के चले। शंकर जी भी इसका अपेक्षा करते हो और वो बच सकता है भला। कामदेव भी जल करके भस्म हो गए मिनटों में और ये त्रिशूल लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते जब वो व्यास आश्रम में पहुंचा, वहां पर व्यास देव जी अपनी पत्नी गुरुका जी को बीचा जी को भगवान की यही लीला कथा सुना रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे थे और वो आश्चर्यचकित होकर के इन कथाओं को मुंह खोल कर क्या हुआ ऐसे खोल करके सुन रही थी। इसने उनके मुख में प्रवेश कर दिया, भीतर पेट में चला गया और एक दो वर्ष नहीं बहुत दिन रहा। इधर में शंकर जी आए घट, अरे व्यास जी एक तोते को देखा ही है इधर में उठता हुआ आया। अरे बोले शंकर जी किस लिए आप उस को ढूंढ रहे हैं? तो मैं इसलिए को अनाधिकारी होकर के इस भागवत को जो पार्वती जैसे लोगों के लिए ही वो कहने लायक है और इस पक्षी ने सुन लिया इसलिए उसको मारने के लिए दौड़ा हूं, मारने के लिए आया। अरे भोलेनाथ जी भागवत सुनने का फल क्या होता है? वह अजर अमर हो जाता है। तो यदि अमर अजर हो गया ये सुख तो आप उसको त्रिशूल से मारेंगे कैसे? तो शिव जी मुस्कुराने लगे और फिर व्यास देव से वंदना इत्यादि करके फिर लौट गए। वही सुख एक 12 वर्ष तक या कोई कहते हैं 16 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे और पूरी भागवत वेद विधान उपनिषद भी सुने और पहले के तो उनके सुख ही हैं कुछ होने के बाद में। व्यास जी बोले आप कौन हैं महात्मा जी? अपनी मैया को कौन कष्ट दे रहे हैं? 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक आप इसी में रहे, आप जो मुंह निकल आई सभी से सेवा जाए, मैं ऐसे नहीं निकलता। यदि माया संसार से हट जाए एक सेकेंड के लिए मैं उसमें निकल सकता, माया में मैं नहीं आ सकता। अभी माया माया माने क्या? माया माने अशक्ति। मैं और वो तोड़ता है माया, जो मैं नहीं हूं मैं आत्मा हूं किंतु शरीर को मैंने मैं मान लिया और शरीर से संबंधी वस्तुओं को मानकर तो उसमें अशक्त हो रहे हैं दिन रात उसी में और संसार में कोटि कोटि जन्मों से इसी में घूम रहे हैं। जैसे कि बच्चे ने बताया, जैसे कपिल देव जी ने बताया, याद नहीं रहती थी उसी में, कभी सुअरात होकर के आए कभी गधे होकर के आए, न जाने फिर गधे और घोड़े होंगे कोई भी पता नहीं, मछली होंगे तो बंगाल की स्त्रियां या पश्चात देशों की स्त्रियां भी ऐसे ही जीवित अवस्था में ऐसे ही छुरी से रगड़ करके और जलते हुए तेल में डाल दे और उसको खा ले। ऐसे ऐसे जन्म होंगे फिर ऐसा मत सोचो जैसे मैं इनका खा रहा हूं। मीट मीट जिसको खा रहा हूं वो खाएंगे, मांस मांस खाता थी जिसका मांस मैं खा रहा हूं वो जरूर खाएंगे, रिक्रिएशन जरूर होगा। इसलिए भाइयों भगवान का भजन करें। तो अब सुखदेव गोस्वामी बोले जैसे मैं नहीं निकलता तो मैं माया को हटा देता हूं, आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं। किस पर विश्वास? कृष्ण यदि स्वयं आकर के कहें तो हो सकता है। तो व्यास जी ने उसी समय ध्यान किया भगवान का और कृष्ण वहां से पहुंच जाए। कृष्ण ने कहा जैसे तुम कौन हो भाई? उसने निकल आओ माता के घर में कष्ट मत। तो कृष्ण ने कहा जी मैं ऐसे नहीं आता, यदि कृष्ण आकर के कहें स्वयं जो माया को मैं हटा देता हूं तो मैं निकलूंगा। कृष्ण ने कहा जी मैं ही कृष्ण हूं, मेरी बात पर विश्वास करो और मैं माया को इतने देर के लिए हटाता हूं कि एक तलवार की पतली धार पर एक सरसों गिराया जाए तो जितनी देर तक वो ठहरेगा कितना देर? एकदम नहीं, उतनी देर के लिए मैं हटाता हूं बस निकल। धार के साथ में उन्होंने माया को हटाया और साथ साथ में वो माता के गर्भ से निकले और उसी समय निकल पड़े करके वन में चलने लगे। जन प्रजन तम अनुपेतम अपेत, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ, उपवित संस्कार भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ और घर छोड़ करके चले। कौन किसका माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा है? सुखदेव गोस्वामी जी के पिताजी व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े, हा बेटा हा बेटा, हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु जंगल से प्रतिनिधि आए, प्रतिध्वनि आई, क्या हाँ बेटा, हाँ बेटा, माने क्या, कौन किसका पुत्र? ये मोह है, मोह है। सभी प्रभु के दास हैं, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को भुला चुके, उनकी ये दुर्गति हो गई है, संसार में पुनः पुनः जन्म है, इसलिए उनके पीछे पीछे भगे और ये आगे आगे चले। कुछ थोड़ी देर के जाने के बाद में एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सी अस्पराएं नंगी होकर के स्नान कर रही थी। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी जा रहे हैं, 16 वर्ष के लड़के और नंग थड़ंग जा रहे हैं, उनको देख करके उनको कुछ नहीं हुआ, स्नान करती रही, चलती रही, पीड़ा करती रही। किंतु जब व्यास देव बूढ़े के बूढ़े, उनकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां और बहुत काफी उम्र वाले, उनको जब देखा तो वो झट उसमें से निकल आई और कपड़े पहन करके उनको दूर से सुना। व्यास जी ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात बेटियों, तुम हमारी बेटी की बेटी की बेटी के बेटी के बराबर हो और मैं इतना बुढ़ा हूँ और तुम हमें देख करके सब जा करके वस्त्रों को पहन करके हमें प्रणाम किया और हमारा बेटा 16 वर्ष का नौजवान तगड़ा और उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? उन्होंने कहा जी ऋषि महर्षि जी आपको प्रणाम है, किंतु वो तो लकड़ी के समान, सूखी लकड़ी के समान चला गया, हमारे तरफ में देखा भी नहीं कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि लकड़ी हैं कि घास हैं कि काठ हैं कि क्या हैं, और आप पूछ क्यों रहे हमें, आप स्त्री के रूप में देख रहे हैं, उसने तो स्त्री के रूप में देखा नहीं, इसलिए हम लोग आप पूछ रहे हैं, आपको होश है कि हम स्त्री है वो पुरुष है, वो पुरुष है, उसको आत्मज्ञान का। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा को कह रहे हैं, इसलिए कैसी कथा होगी, अद्भुतपूर्ण ये कह रहे हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान सागर में, सागर की तरफ इस महाभारत में है, रामायण में जो आप चौपाइयां देखते हैं उसी भागवत का ये संश्लेषण है, अनुवाद है, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा तुलसीदास जी। इसलिए रामायण और महाभारत इसमें श्रीमद भागवत में और विशेष अंतर नहीं है, केवल उपासना का तारतम्य है, इनके राम है और इनके कृष्ण है, किंतु दोनों भी एक है, जिसको मैंने कल थोड़ा सा बतलाया था, आगे हम बतलाएंगे। आज यही तक अपनी कथा का हम विश्राम देते हैं, कल और भी आप लोग संख्या में आएंगे और उन चीजों को सुनने की चेष्टा करें। कल और परसों हम लोग रहेंगे, जिसके बाद में तो हम लोग भारत में चले जाएंगे, तो जो सुखदिमान व्यक्ति हैं, सौभाग्यवान जीव है, इनको सुनेंगे हम, इसकी दक्षिणा भी कुछ नहीं चाहते, आप लोग सुनिए, इसमें जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने की। आज यही निवेदन करके हम लोग इसको समाप्त करते हैं और एक कीर्तन के बाद में आरती होगी। आप लोग
गंगा प्रणति के अनुसंधान अच्छा उपस्थित वैष्णव सज्जन वृंद माताएं बहनों और बेटी, आप लोग जानते हैं कि हम लोग सन्यासी हैं और पिछले घर में भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए छात्र हैं। कोई भी अपना कोई भी स्वार्थ के लिए हम लोग आए, लोगों की कुछ सहायता हो सके और अपने जीवन में एक जीवन में और दूसरे जीवन में भी छुट्टी हो सके, तो इसी के लिए हम लोग का प्रयास आना। अभी बात वहां पर हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा आने का उद्देश्य आपका क्या है। हमने कहा समाज रूप बहुत कर रहा है, भारत में जानते हैं लाइन से कुछ ठीक हो रहा है, लोग भूख शक्ति नहीं सोच पाते। हमारे शास्त्रों में लिखा है इस समाज में महिलाओं का आदर भी होता है, उनको माता बहन और कन्या के रूप में नहीं जाना जाता है, अर्धांगिनी के रूप में अपनी पत्नी को अर्धांगिनी आधा अंग और बाकी तमाम महिलाओं को माता है, और अपने जो समय अपने वैश्य की जो उम्र की है अपनी बहन और सबको अपनी बेटी है। जिस समाज में ऐसा नहीं होता उस समाज का पतन होता है, वो कभी भी सुखी नहीं है। किंतु जिस समाज में लड़कियां ही नगरी होकर के चले और वही शराब पी है और वही गंदे काम करें, तब फिर उसको बहन कैसे और माता कैसे बना। इसलिए बहनों और माताओं का भी कुछ आजकल दोष है, वो लोग भी अपने दोष सुधारने की चेष्टा है। अभी मैं अमेरिका कनाडा में गया था, वहां पर एक बड़े हमारे पंजाबी भाई थे, उनकी उम्र करीब करीब 50-60 के करीब की बात करते हुए मिल गए। उन्होंने कहा कि क्या बात हुई, इसलिए महाराज जी मैं पंजाब में बहुत सुखी परिवार का था, मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा किया, गोल्ड मेडलिस्ट में हूँ, और फिर यहाँ से कुछ और भी रुपया कमाने के लिए मैं यहाँ आया अपनी पत्नी के साथ में कनाडा में, बहुत रुपया कमाया, बहुत रुपये कमाए जिसका हद नहीं, और हमारा एक ही लड़का और एक लड़की है। लड़की हमारी करीब करीब 30-31 वर्ष की है, क्या कहूँ, आया था धन कमाने के और सुखी होने के, किंतु मैं नहीं समझ रख पा रहा हूँ मुझे अब क्या करना चाहिए। अब इसकी क्या नहीं है, पहले मेरी लड़की एक अपने गर्ल फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ में आई, शराब पिए हुए थे, उससे आगे उनको खुले हुए थे और हाथों में भी बोतल थी शराब की बोतल थी और गन था पाइप गन। मैंने उसे कहा कि बेटी ये हमारे दिल के लिए नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई चीजें नहीं पढ़ाया, हम हाथ छोड़कर भी अपनी बेटी को बेचने के लिए हम लोग नहीं आए, अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो अभी बोलेंगे तो अभी अभी बंदूक से चुप कर देंगे, अभी एक सेकेंड चल रहा है चुपचाप बैठी और हमारे घर में ये होता रहा। मैं देखता रहा, मैं सोचा जिसे फांसी लगा लूँ या भी खा लूँ या क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आया। यदि हास्पिटल में लौटूँ तो अब लौट करके मैं वहाँ क्या करूँगा, और यदि यहाँ रहता हूँ तो यहाँ क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी पत्नी का फल होगी आपने उनको कुछ शिक्षा नहीं दी, इसका ही समाज ऐसे बहुत रहा। यहाँ पर भी ऐसा ना हो एक दिन के लिए एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड सब भी आप दूसरे के बाद में लड़के के जो हो गया इसके बाद वो डाइवोर्स करके किसी प्रेमी के साथ में चलिए जीवन बर्बाद हो गया, वो लड़के नहीं आए हम किसके पुत्र हैं, वो समाज कैसे उन्नत हो सकता है, व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए हमारी बहनें बेटियाँ और माताएं इन चीज़ों को सीखें और हमारे भाई लोग भी सूचित है, इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे लिए भी कहते थे जैसे गुरु ट्रेनिंग होता है, मास्टरों का ट्रेनिंग होता है, ऐसे फादर मदर का भी ट्रेनिंग होने चाहिए। वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करें जिससे वो जीवन में सुखी रह सके। आज हम देखते हैं खर्चन की समस्या है। भारतवर्ष में मैं जब था बंबई में था एक बार, तो भारतवर्ष के समस्त उत्सवियों में हिंदुजा परिवार है एक अक्षर जानते हैं और कितने उनके सदाचार और कितने क्या है इसका कम नहीं करता। मैं उन्होंने अपने घर में निमंत्रण किया, मुझे मैं गया कुछ समय बैठा बातचीत होने लगे। कितने मैं समझता था कि बड़े सुखी लोग होंगे, किंतु मैं जानता हूं सुखी नहीं होता। उनका एक लौता बेटा जब है बड़े भाई ने अशोक हिंदू गया, उस सारे विश्व में अपना कंट्रोल करते हैं, बिजनेस तरह करते हैं, उनकी कितनी आमदनी है कोई था नहीं और कितना खर्च करते हैं ये भी था नहीं। वो पिछले वर्ष उनका एक ही लड़का था, वो 22-23 वर्ष का, और उसने जहर खा लिया। उसके माता पिता भाई लोग सभी लोग पागल हो गए। मैंने पहले खाया भी, वो एक सुंदर ऑस्ट्रेलियन गर्ल के साथ में शादी करना चाहता था, किंतु उस लड़की ने इनकार कर दिया, पर उसने भी खा लिया। मतलब वो धन और ये सब कुछ रखकर भी क्या किया, सभी पागल हो गए। हमने बहुत लोगों को शांत करने दिया, ये भगवान का स्मरण कीजिए तभी आप सुखी रह सकते हैं। बच्चों को आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी, कभी कथाओं में नहीं ले गए, उन लोगों ने सुना नहीं, आश्रम तत्वों के समझ में नहीं सुना, समझा यही करी थी तब पूछा और धन नहीं तब है कहाँ का धन, धन क्या दिया। इसे आप लोग विचार करें, अपने बेटा बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, नहीं देंगे वो आप लोगों को नहीं मानेंगे, आपका जीवन बर्बाद। अच्छा फसल में समस्या यही है, तो जिसमें यही समस्या तो भगवान का भजन क्या करेगा। जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं वो भगवान की सेवा क्या करेंगे। वो तो कहते हैं कि बाई एक्सीडेंट हम पैदा हो गए, वो तो अपने भोग के लिए उम्मीद रहे थे हम पैदा हो गए, क्योंकि इसलिए है माता पिता, वो नहीं कर सकते, नहीं मानते, इसलिए ये सब शिक्षाएं नहीं होगी। लेकिन इन संतों को बुलाना चाहिए जो इस विषय में परफेक्ट, जो आचरण करते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनसे बहुत परिवर्तन हो जाता है, समाज सुखी और ठीक रहता है। ऐसे प्राचीन शक्ति के लिए उदाहरण भरे पड़े हैं, क्यों भजन करना चाहिए हमें, जरूरत क्या है। एक आदमी को धन है, संपत्ति है, दस बीस कार्य हैं और बहुत से उसके बिजनेस वाणिज्य और सब कुछ है, भजन भी क्लियर करने के लिए कोई भी शुरू नहीं है। 10 minutes If you are happy in this world with father, mother and whole family, why do you need to do that? What is the need? 10 minutes, no.
Thank you.